وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قرآن کریم کی ان آیتوں میں جو آج پڑھی گئی، ایک بڑا عظیم مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے. ایمان والوں سے اللہ کا ایک خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرنے کے یہ معنی نہیں ہے جیسے آدمی بھیڑیے سے ڈرتا ہے، جیسے آدمی شیر سے ڈرتا ہے، جیسے آدمی سانپ سپولیے سے ڈرتا ہے، آگ کے انگاروں سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کے یہ معنی نہیں ہوتے. اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو اور اس کے نہیں کا اجتناب ہو. جو مامورات ہیں ان کو بجا لائے، اور جو منہیات ہیں، جو منع کی گئی ہیں چیزیں، جن سے روکا گیا ہے، ان سے رک جائے. اگر آدمی میں یہ دو خوبیاں ہیں تو چاہے وہ صبح سے شام تک حساس بساس رہتا ہو، خوش و خرم رہتا ہو، تب بھی کہا جائے گا یہ اللہ سے ڈرتا ہے. پہلا حکم تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم یہ ہے وَاتَّقُوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کیا جو کچھ کر رہا ہے آج ہی کے لیے کر رہا ہے؟ جب کل کا ذکر کیا تو کل کے مقابلے پہ آج ہوتی ہے. ایک کل گزشتہ ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو صرف توبہ کرنا ہے، اور اگر نیکیاں ہو گئی ہیں تو اس پر خوش ہو جانا ہے. نیکی کرو تو خوش ہو جاؤ، غلطی کرو تو توبہ کرو. اور آج جو ہماری زندگی ہے یہ دنیا کہلاتی ہے. آج کی اس دنیا میں کل کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو اس کا آدمی ہر وقت دھیان رکھے کہ میں نے کل کے واسطے بھی کچھ بچا رکھا ہے. اور کل سے مراد ہے بڑی کل. چھوٹی چھوٹی کلیں تو روز آ رہی ہیں. یہ آج ہمارا اتوار ہے تو کل پیر کو کل ہو جائے گی، پھر کل آج ہو جائے گا، اور پھر پرسوں پیر کل ہو جائے گی. تو ہر آج کے بعد میں کل آتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی کلیں تو روز آ رہی ہیں، اور ایک ایسی بڑی کل آ رہی ہے جس کے بعد پھر آج ہونے والا نہیں، جس کے بعد پھر رات ہونے والی نہیں ہے. ایک ایسا دن آ رہا ہے کہ جس دن کے بعد پھر رات نہیں آ رہی. وہ بہت بڑی کل ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی چیزوں کو سمجھنا یہ عقل والوں کا کام ہے. پانی کے چند قطروں کو دیکھ کر آدمی کی عقل بتاتی کہ ان کا کوئی ضرور مرکز ہے، اور سمندر ضرور ہے کہیں نہ کہیں. اگرچہ نہیں دیکھا سمندر، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ گھڑوں میں پانی ہے، یہ سراہیوں میں پانی ہے، یہ ہماری بوتلوں میں پانی ہے، ہماری جھیل میں پانی ہے، ہمارے پائپ میں پانی آ رہا ہے، تو عقل یہ ضرور بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا سمندر ضرور ہے جو اس پانی کا مرکز ہے. چھوٹی چھوٹی چنگاریوں کو دیکھ کر ضرور عقل بتاتی ہے کہ ان چنگاریوں کا کوئی بہت بڑا مرکز ہے، جہاں بہت بڑی آگ کے تودے رکھے ہوئے ہیں. کہیں جنگل میں اگر چھوٹے چھوٹے سپولیے ہم کو نظر آتے ہیں، سانپ کے بچے، تو عقل بتاتی ہے کہ یہاں ضرور ان کا کوئی باپ بھی رہتا ہے، کوئی ازگر بھی رہتا ہے، کوئی اژدہا بھی یہاں رہتا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں کا سمجھنا یہ عقل کا کام ہے. تو آج گئی، کل آ گئی، کل گئی، پھر کل آ گئی، اور ہر آدمی یوں سوچتا رہے گا کہ میں کل کو کریں گے تیاری، آج تو گزار لو جیسے گزرے، کل کو سب کاموں سے ہم توبہ کر لیں گے اور کل کو ٹھیک ہو جائیں گے. ہر شب گویم کے فردا ترک این سودا کنم، اور بعد چوں فردا شود روز را فردا کنم. ہر دن سوچتا کہ کل کو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، آج غلطی کر کے کل توبہ کر لیں گے، جب کل آئی تو کل کر لیں گے، پر کل آئی تو پھر کل کر لیں گے، یہاں تک کہ یہ زندگی ہماری پوری ہو جاتی ہے. तो कल की फिक्र करो। हर आदमी को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या किया है, और कल जो है वो है कयामत की कल, जिसके बाद फिर रात होने वाली नहीं है, जब मुहर्रम की 10 तारीख को जुमे के दिन सूर्य फूंक दिया जाएगा और कयामत आ जाएगी और चांद और सूरज खत्म कर दिए जाएंगे, जमीन आसमान को बदल दिया जाएगा। तो अब ये इतना लंबा दिन होगा कि इसकी शामी होने वाली नहीं है, फिर यही दिन होगा हिसाब किताब का, और इसी दिन में चले जाएंगे लोग जन्नत में और दोजख में, और जन्नत और दोजख में ये दिन ही रहेगा, जन्नत में कभी रात आने वाली नहीं है। कभी कोई ये सोच रहा हो कि वहां भी रातें आया करेंगी और पढ़ के सोया करेंगे, नहीं, वहां तो दिन ही दिन रहेगा, और ऐसा वक्त रहेगा जैसे सुबह की नमाज के बाद जब खूब उजाला फैल जाता है, और अभी सूरज निकला नहीं होता, तो जैसा सुहाना वक्त ये होता है सुबह का, सूरज निकला हुआ नहीं, और रात भी इसको नहीं कह सकते और दिन भी इसको नहीं कह सकते, इसलिए कि सूरज नहीं निकला, तो जैसा वक्त सुबह की नमाज के बाद फिजाओं में रोशनी का होता है सूरज निकलने से पहले, ये अंदाज होगा वहां जन्नत के दिन का, ऐसा समा होगा। तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि उसके बाद रात होने वाली नहीं, वही कल है, उसकी तैयारी कुछ करनी चाहिए, और उसकी तैयारी क्या है, उसकी तैयारी है अल्लाह के अहकाम की पाबंदी, ईमान पर फिर अमल साले, और अमल साले में इखलास और इस्तिकामत, और हर चीज में ये सोचते रहना कि ये मेरा अमल शरीयत के हुदूद में हुआ है तो काबिले कबूल है, और अगर शरीयत के हुदूद इसमें टूट गए हैं तो ये नाकाबिले कबूल और मुंह पे मार दिया जाएगा। तो हर दिन आदमी ये सोचे कि मैं कल के लिए भी कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या जितना कमाता हूं आज ही खा लेता हूं उसको, वो आदमी अकलमंद नहीं समझा जाता, जो आज कमाता है आज ही खत्म कर देता है, वो आदमी अकलमंद समझा जाता है जो आज कमाता है और आज का काम भी चला लेता है और कल के लिए भी दो पैसे बचा के रखता है। तो हमें कल के लिए तैयारी करनी है। अल्लाह ने हुक्म दिया वल तंदुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, और ये कब होगा, जब आदमी में खुदा का खौफ, वत्तकुल्ला, फिर वत्तकुल्ला आ गया, अल्लाह से डरो, तो बार बार अल्लाह का वत्तकुल्ला फरमाना ये कुछ न कुछ तो माना रखता है ना। और फिर अल्लाह ने अपना तकवा और अपना खौफ पैदा करने के लिए एक मुराकबा तजवीज फरमाया, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, कि अल्लाह उन तमाम कामों को जो तुम करते हो उनसे खबरदार है, उसके इल्म से उसकी खबर से तुम्हारा कोई अमल भी गायब नहीं हो सकता है। खलवत में करो, जलवत में करो, और रात के अंधेरे में करो, बिल्कुल तन्हाई में करो, और कोई भी तुम्हारे अमल को नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। बस अगर ये जहन बन जाए कि अल्लाह मेरे इस अमल को देख रहा है, तो अच्छा बताओ हिम्मत होगी उसकी गुनाह करने की? फिर अगर ये मालूम हो जाए कि मेरा बाप भी मेरे इस अमल को देख रहा है, तब भी आदमी की हिम्मत नहीं होती गलत काम करने की। और जब ये मालूम है कि अल्लाह मेरे इस अमल को देख भी रहा है, उसे खबर है, तो फिर उस गलती के करने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो फिर पछताएगा, शर्माएगा, तौबा करेगा, नादिम होगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि देखो, भूलू मत बन जाओ, वला तकूनू कल्लज़ीना वला, और तुम ऐसे मत बन जाओ जैसे लोग दुनिया में भूल जाते हैं अपने आप को। भूलने वाले मत बनो, याद रखने की कोशिश करो, और कभी अगर भूल आ जाए तो फिर उस पर पछताओ, नादिम हो, शर्मिंदा हो, भूल तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए। ये कब होगा? जब आदमी को फिक्र होगी, फिक्र को बेदार करना चाहिए, और आदमी को सोच में रहना चाहिए कि मेरी जिंदगी याद की होनी चाहिए, मेरी जिंदगी भूल की नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी जिंदगी में एक आध भूल लग गई तो चलो माफ हो जाती है, जैसे मसलन रोजे में कभी इत्तेफाक से भूल कर रोजे में कुछ खा पी लिया, चलो माफ हो जाएगा, लेकिन ये कि रोजा रोज ही खाने लगे हमारी भूल गया था, तो ये तो गुंजाइश भूलने इतने भूलने की तो गुंजाइश नहीं। आदम अलैहि सलाम भी भूले हैं, मगर एक ही बार तो भूले हैं, और वो अल्लाह का हुक्म था कि इस पौधे के करीब मत जाना, बस भूल लग गई और उसको खा लिया, और वो भी अल्लाह ही के हुक्म से लगी थी भूल। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, जो लोग अपने आप को फरामोश कर देते हैं, अपनी खबर नहीं लेते हैं, दूसरों की फिक्र में पड़े रहते हैं, दूसरों को नसीहत करते हैं, दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं, तो गोया अपने आप को भुला देना और दूसरों की दूसरों की ऐबजोई में पड़े रहना, दूसरों के हालात में पड़े रहना, जैसे इस जमाने में आम तौर पर अखबार पढ़ेंगे, रेडियो सुनेंगे, दुनिया भर की तमाम खबरें हमारे इल्म में आ जाएंगी और अपनी कुछ भी खबर नहीं है कि हम क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, फलां जगह झगड़ा हो गया, फलां जगह इतने लोग मर गए, फलां चौकियों पर फलां मुल्क का कब्जा हो गया और हमारी आंख पर शैतान का कब्जा, हमारे कान पर शैतान का कब्जा, हमारे दिमाग में शैतान का कब्जा और इनकी हमको फिक्र नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग मत बनो जैसे दुनिया में लोग आए और वो अपने आप को भुला बैठे, जैसे यहूदियों ने अपने आप को भुला दिया, जैसे ईसाइयों ने नसरानियों अपने आप को फरामोश कर दिया, जैसे बुत परस्तों ने, मुशरिकों ने, आतिश परस्तों ने अपने आप को फरामोश कर दिया और अपनी खबर ही नहीं लेते, अपनी कल की फिक्र में नहीं पड़ते, ऐसे मत हो जाओ। इसलिए कि जो ऐसा हो जाता है वो फासिक व बदकार होता है, वो हस्ते निकल जाता है, शरीयत के हुदूद तोड़ने वाला होता है। और फिर कहां से कौन याद दिलाएगा हमको, हमारे वास्ते मुजक्किर कौन है? कहते तुम्हारे पास इतना बड़ा अजीम कुरान हमने उतारा है जिसकी अजमतों का, जिसके रोब और दबदबे का ये आलम है कि लव अंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ भी इसकी अजमत से लर्जा होता और फिर रेजा रेजा हो जाता। इतना बाहिम्मत है इंसान कि कुरान उसके पास मौजूद है, उसको सुबह से शाम तक पढ़ता भी है, नमाज में तो कम से कम सुनता ही है और फिर उससे असर नहीं लेता। तो पहाड़ भी मुतासिर होते इस कुरान से और जमीन भी मुतासिर होती, चांद सूरज भी मुतासिर होते, सब चीजें मुतासिर हैं इस कुरान करीम की अजमत से, ये सारी चीजें मुतासिर हैं। पहाड़ों को भी एहसास है कि कुरान करीम की अजमत से ही हम बचे हुए हैं, वरना तो हमें तो रेजा रेजा कर दिए जाते। तो कुरान करीम को पेश नजर रखकर अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करो, उसमें तुम्हारे वास्ते हलाल और हराम के कानून बयान किए गए हैं और करने और न करने के उसूल बताए गए हैं और कल की तमाम बातें तुम्हें करने के लिए बताया गया है। इस कुरान को पेश नजर रखो। लौ अंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। और फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि ये मिसालें हम देते हैं कि पहाड़ भी चिकनाचूर हो जाते और तुम इतने लोहालाट बन गए हो, तुम इतने मजबूत बन गए हो, तुम्हें इससे नसीहत इबरत हासिल नहीं होती। और फिर अगली आयतों में अल्लाह ने अपने बहुत सारे सिफात बयान फरमाए और आखिर की आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह की तमाम चीजें तस्बीह पढ़ती हैं, यानी जर्रा जर्रा अल्लाह का तस्बीह खां है, चरण परन हजर शजर दरिया नदी नाले उलवी सफली सब सारा आलम, आलम मलकूत, आलम हाहूत, आलम नासूत, आलम जबरूत, सर हर आलम की हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। सब बेहलहू माफी समावात व लर्द। तो आप अंदाजा तो लगाइए कि जिनके वास्ते अल्लाह ने कुरान उतारा वो तो तस्बीह में लगता नहीं है, गफलत से सो जाता है, और जिन पर अल्लाह ने कुरान नहीं उतारा वो अल्लाह की तस्बीह में, अल्लाह के जिक्र में हर वक्त लगे रहते हैं, कोई दुनिया की चीज गाफिल नहीं है अल्लाह के जिक्र से। वही मिन शयइन ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। एक बुजुर्ग हैं जो उनको इन कंकरियों में से तस्बीह की आवाज आती है, ये कंकरियां जो रस्ते में पड़ी रहती हैं। एक साहब चले जा रहे थे और उन्होंने एक कंकर को, एक पत्थर के टुकड़े को ठोकर मार के रास्ते से हटाया तो उसमें से ये आवाज आई कि अल्लाह के बंदे तुझे ठोकर मार के अलग करने की क्या जरूरत पड़ी थी, मैं अल्लाह के तस्बीह अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी। तो कंकरियों की तस्बीह बाद अल्लाह वाले सुन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब एक शख्स कंकरियां लेके आया था और यूं कहा था कि अगर तुम ये बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं तुम पे ईमान ले आऊं, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं बता दूं कि वो चीजें ही खुद बता दें कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। और आपने उन कंकरियों को इशारा किया जो उसके हाथ में थी और वो कलमा पढ़ती हुई उसकी मुट्ठी में से बाहर निकल आई। तो कंकरियां कलमा पढ़ती हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए थे और मछली उनको लेकर के तातसरा में बैठ गई थी और वहां समंदर के नीचे पानी की तह में जो संगरेजे छोटे छोटे पड़े हुए होते हैं, उन संगरेजों में से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह सुन रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तस्बीह पढ़ रहे थे संगरेरे वहां के। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्बीह को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने इस तस्बीह की बरकत से उनको मछली के पेट से निजात दी और बाहर आए, और फिर अल्लाह ने उनको सेहत और ताकत और तवानाई दी। आज भी ये ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का अमल किसी भारी मुसीबत में फंसने वाले के वास्ते तिरयाक का इक्सीर का काम करता है। और बुजुर्गान दीन बताया करते हैं कि तुम इस तस्बीह को पढ़ो तो तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगा अल्लाह। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कंकरियां पड़ रही थी समंदर की तह में, संग्रेरे पढ़ रहे थे। तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाले आलम के जर्रे जर्रे हर हर चीज के अंदर से तस्बीह की आवाज निकलती है, जिसको अल्लाह ने फरमाया युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ध वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह इज्जतों का मालिक है, हिकमतों का मालिक है। अल्लाह ने अपने बहुत सारे असमाए हुसना इस सूरत की आखिरी दो तीन आयतों में जिक्र फरमाए हैं। उनमें से हर एक नाम पर अगर हम कुछ बोलें तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा, और आज सुबह के वक्त में क्योंकि रोजाना यह दर्श का सिलसिला चलता है, तो मुझे ये भी डर लग रहा था आज कि कहीं आप हजरात ये न सोचें कि अल्लाह मेरे कब को मौलवी हमारी छुट्टी करेगा। कोई दिन ऐसा भी आएगा कि हम सुबह की नमाज के बाद जाके रात के जागे हुए हैं चल के पढ़ के सो जाएं। ये तो बिला कही लोगों को रोकने का आदि बन गया, तो ये डर लग रहा था। फिर ये ख्याल हुआ कि चलो मुख्तसर सा तो बयान कर ही दूं और एक बात की तरफ और ध्यान दिला दूं और तवज्जो, और वो ये है कि आज रमजान शरीफ की 20 तारीख हो गई है। इस 20 तारीख के माना ये होते हैं कि दो अशरे खत्म हो गए हैं। पहला अशरा रमजान का रहमत का होता है, वो भी पूरा हो लिया, और दूसरा अशरा रमजान का मगफिरत का होता है। आज शाम को जिस वक्त हम रोजा खोलेंगे ये अशरा भी अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच जाएगा। तो रहमत वाला अशरा भी हमारे हाथ से चला गया और मगफिरत वाला अशरा भी आज थोड़ी देर के बाद में हमारे हाथ से चला जाएगा, और फिर एक साल तक हमको इन दो अशरों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम यूं चाहें कि लाखों पौंड लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च करके अशरा रहमत को या अशरा मगफिरत को हम वापस ला सकें तो नामुमकिन बात होगी। ये पलट के आने ही वाला नहीं है। अगले साल कोई जिंदा रहेगा तो उसको ये अशरा रहमत और अशरा मगफिरत मिल सकेगा। तो दो अशरे तो हमारे हाथ से चले गए हैं, अब हमको ये सोचना चाहिए कि अशरा रहमत से अल्लाह की कितनी रहमतें हमने हासिल की और अशरा मगफिरत से हमने अपने कितने गुनाहों को माफ करा लिया है। इस पर गौर करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मेला लगा, उसमें चीजें सस्ती भी की, फर्ज की कीमत 70-70 के बराबर हो गई और नफल फर्जों के बराबर पहुंच गए और एक एक ताअत का सवाब बहुत बढ़ गया, लेकिन हमने उनकी कदरदानी नहीं की तो हमारे हाथ से रहमत का अशरा भी चला गया, हमारे हाथ से मगफिरत का अशरा भी चला गया। अब एक अशरा ले दे के रह गया, और ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसी फुर्ती से चला जाएगा कि हम हाथ मलते रह जाएंगे और फिर हमको ये अशरा भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये अशरा कौन सा अशरा है? इसमें तो अल्लाह सुबहान व तआला की रहमतों के दरिया बहने लगते हैं और उन लोगों की मगफिरतें होने लगती हैं जिनको जाब्ते में जहन्नम का फैसला सुना दिया गया। यानी जिन लोगों की जो जिंदगी है और उस पर अल्लाह ने उन जाब्तों में उनके लिए जहन्नम का फैसला किया है, मराहिम खुसरवाना के तहत अल्लाह ताला की रहमत खास और मगफिरत खास के तहत इस अशरे में उन लोगों के वास्ते परवाने जारी हो जाएंगे कि तुम भी बख्शे गए। वाखिरहू इतकुम मिनन नीरान, ये आखिरी अशरा जो है रमजान शरीफ का, ये जहन्नम से आजादी का अशरा है। तो क्या हमारी अब जिम्मेदारी नहीं हो गई कि हम रात को दिन को सुबह को शाम को अल्लाह की जनाब में अपने गुनाहों की माफी मांग कर और अपने आप को बख्शवाने की कोशिश कर लें? हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस शख्स के वास्ते बड़ी बदनसीबी है जिसको रमजान शरीफ का महीना मिले और उसके अशरा रहमत में और अशरा मगफिरत में और आखिरी अशरे में भी अपनी बख्शिश न करा ले। इतने सआदतमंद इतने बरकतों वाले महीने में, इतने मुबारक महीने में भी उसने अपने आप को अल्लाह के यहां बख्शने के लायक नहीं बनाया है तो फिर कब बनाएगा वो? तो बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो रमजान की बरकतों से महरूम रह जाए। तो अब तक जो हमारे दो अशरे चले गए, अब उसमें जो हमसे कोताहियां हुई हैं वो तो हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा तो हम कर ही सकते हैं कि इस अशरे को जो ये आखिर में आ रहा है, और इसके तो हो सकता है कि 10 दिन भी ना हो, और यहां तो हुआ ही करें मुश्किल, ये आखिरी अशरा तो वैसे भी कम रह जाता है। पहला अशरा पूरा 10 दिन का और दूसरा अशरा भी पूरे 10 दिन का, और ये आखिरी अशरा जो है इस पर तो खुदा जाने कितने लोगों की निगाहें लग रही हैं कि अल्लाह 29 का हो जाए रमजान, अल्लाह 29 का हो जाए रमजान, और कहीं न कहीं से चांद आसमान से, जमीन से, दरियाओं से, पहाड़ों से और हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से और किसी न किसी मुल्क से बस खबर आ जाए तो हमारे 29 रोजे हो जाएंगे। ये अल्लाह का करम है कि सारा ईद इन लाजन कुसान, 2 महीने ईद के ऐसे हैं कि ये अगर 29 दिन के भी होते हैं तो अल्लाह फिर सवाब 30 दिन का देता है। अल्लाह मियां के यहां कटौती नहीं करती है, कमीशन नहीं करता। अगर 29 भी हम रोजे रखेंगे 29 ही तरह भी पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के यहां का जाबता यह कि इस महीने के 29 दिन को भी अल्लाह 30 दिन का शुमार करता है और 30 ही रोजे लिखता है हमारे नामे अमल में, और 30 ही तरह भी लिखता है, और 10वें दिन भी अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमाते रहते हैं। तो ये अल्लाह का करम, उसकी मेहरबानी, और वो एक दिन जो होता फिर ईद का आ जाता है, और ईद के दिन तो आपको मालूम ही है कि जब ईद गाहों में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते कि ये क्यों जमा हुए हैं यहां पर, तो फरिश्ते कहते जी ये तो महीने भर रोजे रखे हैं, महीने भर रात को तरावियां पड़ी हैं, ये तो उनकी इतनी मेहनत मजदूरी लेने आए हैं, ये मेहनत करके आए हैं, मेहनत मजदूरी लेने आए हैं, आज इनकी मेहनत, इनका आज इनकी उजरत चुकानी है। तो अल्लाह ताला फरमाते कि अच्छा तो तुम गवाह हो जाओ मैंने इन सब की मगफिरत कर दी, तो जो कुछ थोड़ी बहुत कसर मसर रह गई होगी वो ईद के दिन पूरी हो जाएगी, अब ये रमजान शरीफ का महीना मुकम्मल हो जाएगा और अपने घर चला जाएगा। अब ये 11 महीने तक रमजान शरीफ का महीना आराम करेगा, जैसे हम लोग भी अब 11 महीने तक मुकम्मल आराम करेंगे, 5 वक्ता नमाज में भी कोताही करेंगे और दूसरी नेकियां भी हमारी कमजोर पड़ जाएंगी और हमारे गुनाहों का सिलसिला और मजबूत हो जाएगा, और जब हमसे कहा जाएगा अल्लाह के बंदो ये रमजान शरीफ चला गया तो नमाजें भी तुम्हारी चली गई, कहने लगे जी रमजान शरीफ का महीना फिर आएगा तो फिर अल्लाह मियां से बख्शिश करा लेंगे, मगफिरत हो जाएगी, ये बात ठीक है हो जाएगी, लेकिन क्या किसी के पास ऐसी कोई गारंटी है या ऐसी कोई जमानत है जो यूं कह सके कि हां अगले रमजान तक मैं जिंदा रहूंगा? अगर अगले रमजान तक न रहे हम तो फिर क्या होगा, फिर वो गुनाहों की गठड़ी हमारे साथ जाएगी। और अगर जवान लोग यूं कहें कि साहब ये तो वक्त तो बुढ़ों का आया करता है, नहीं बुढ़ों का तो आता ही है, हमने तो जवानों का भी आता वक्त देखा है, और 20-20 साल के, 30-30 साल के, 25-25 साल के, 15-15 साल के, हंसते खेलते, कोई बीमारी नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं, और हंसते खेलते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, क्या ऐसा दुनिया में नहीं हो रहा है? कोई जमानत नहीं है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा से पूछा कि बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों पर कितना भरोसा है? फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सब भी बैठ जाते थे, हजरात सहाबा भी बैठ जाते थे, वैसे तो ये हमारी नशस्त जो है बिल्कुल ऐन सुन्नत के मुताबिक हो रही है, मगर इसकी पाबंदी ऐसी कर लेना कि लोग यूं समझे जैसे फर्जी समझ लिया हमने, नहीं ऐसी पाबंदी हमको नहीं, बल्कि एक आध दिन नागा कर देंगे, चलो किसी दिन करेंगे फिर, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि ये फर्ज के दर्जे में नहीं है, मुस्तहब के दर्जे में है, किसी दिन थोड़ा बहुत करके नागा कर देंगे, और नागा करने से भी अमल खैर में बेबरकती हो जाती है, इसलिए अच्छी बात अगर शुरू कर दो चाहे वो नफल ही हो, दिल में तो यही समझो कि ये नफल है और जरूरी और वाजिब अल्लाह ने इसको नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसकी पाबंदी अगर हम करेंगे तो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल होगा। आपने इरशाद फरमा खैरुल अमल मा दीमा अलैहि व इनकल्ला, बेहतरीन अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए अगरचे वो थोड़ी ही देर का हो। तो आपने पूछा कि तुम्हें अपनी जिंदगियों पर कितना भरोसा है, तो हजरत सहाबा ने अर्ज किया कि हजरत बस इतना कि सुबह की नमाज पढ़ी तो जोर तक का भरोसा है, जोर की नमाज पढ़ी तो असर तक का भरोसा है, और एक नमाज से दूसरी नमाज तक का हमें ऐसा मालूम होता कि हम जिंदा रहेंगे। तो आपने इरशाद फरमाया तुम्हें तो अपनी जिंदगियों पर भारी भरोसा है, ये तो बहुत बड़ा भरोसा है, मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे तो इतना भी भरोसा नहीं है कि एक सांस जाता है दूसरा आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर दूसरा ही रुक गया और जिंदगी खत्म हो गई, तो इसलिए हर सांस में आदमी को तैयार रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि शायद मेरा आखिरी लम्हा हो, शायद ये मेरी आखिरी जिंदगी का आखिरी सांस हो। अगर ये अंदाज होगा तो फिर आदमी अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए, कल के लिए कुछ तैयारी करेगा। जो जिंदगियों पर ज्यादा भरोसा ठीक नहीं होता। हाँ, कल की तैयारी में हमको लगे रहना चाहिए और कयामत के लिए हमको गाफिल नहीं होना चाहिए। भूल जाने वालों की सफ में हमको खड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखने वालों की सफ में हमको आगे रहना चाहिए और कुरान करीम को अपना मुजक्किर बनाना चाहिए और कुरान करीम की अजमत हमारे पेश नजर होनी चाहिए कि अल्लाह ने कुरान करीम की अजमत को इस तरह बयान फरमाया कि अगर हम इसको कुरान करीम को पहाड़ों पर उतारते तो ये कुरान करीम की उतरने की वजह से पहाड़ उसकी अजमत से रेजा रेजा हो जाते और फिर इस पर हमारा ध्यान रहे कि हम ही अल्लाह की तस्बीह नहीं है, हम पे तो गफलत भी तारी हो जाती है, मगर ये खसो खाशाक, ये तिनके, ये शजर, ये हजर, ये फल, ये फूल और ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सितारे और जमीन का एक एक जर्रार, पानी का एक एक कतरा हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में लगा रहता है। बताओ कितनी खलकत अल्लाह की तस्बीह पड़ रही है, मगर इंसान जो है बस यही गाफिल है। वलिल्लाह यजदु मन फिस समावात व मन फिल अर्द व शम्स वल कमर व नुजूम व शजर व दवाब, हर चीज अल्लाह के सामने सजदा करती है। वह कसीर मिन अन्नास, और बहुत से लोग भी अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन लोगों की तकसीम हो गई है। वह कसीर हक्का अलैहिल अज़ाब, और एक जमात इंसानों की बहुत बड़ी ऐसी भी है जो अल्लाह को सजदा नहीं करती, गैरुल्लाह को सजदा करती है, तो उनके वास्ते अल्लाह का अजाब तय हो चुका है। इसलिए हमको अल्लाह के इबादत करने वालों में, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वालों में, अल्लाह के जिक्र करने वालों में हमको रहना चाहिए। दो तस्बीह, अगरचे मैंने पहले भी शायद जिक्र की थी, मगर आज फिर आपके सामने अर्ज किए देता हूं। एक तस्बीह बड़ी मुख्तसर सी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, याद होना भी कुछ मुश्किल नहीं है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, इसको 100 मरतबा पढ़ लो, चाहे एक जगह बैठकर पढ़ लो, चाहे कई जगह बैठ के पढ़ लो, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इस तस्बीह के पढ़ने में, 100 मरतबा पढ़ने में, लेकिन इसकी फजीलत और इसका सवाब जो सही हदीसों में आया है वो ये है कि जो आदमी एक दिन में इस तस्बीह को पढ़ लेता है तो उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो उसके गुनाह दरियाओं के झागों के बराबर ही क्यों न हो। क्या मुश्किल है इस तस्बीह को पढ़ लेना। बच्चे, नौजवान, सबको ये तस्बीह याद हो जानी चाहिए, और फिर बच्चों से भी कहो कि मियां चल एक तस्बीह हाथ में लो और पढ़ लिया करो। एक तो ये तस्बीह, और एक और तस्बीह जो सही हदीस में आई है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर। इस कलमे की एक तस्बीह अगर हम 24 घंटे में पढ़ लेते हैं तो सही हदीस में यह आया है कि उसको 10 गुलामों के आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो एक तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम की पढ़ लिया करें, और एक तस्बीह इस कलमे की पढ़ लिया करें, तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे पहली तस्बीह से, और 10 गुलामों के आजाद करने का सवाब मिल जाएगा हमको इस दूसरी तस्बीह से, और हम भी अल्लाह की उस मखलूक में शुमार हो जाएंगे जो अल्लाह की मखलूक अल्लाह की हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती है। हमसे हर वक्त तस्बीह पढ़ने का मुतालबा नहीं है, हमें सोने की भी इजाजत है। हमें खास तौर से हिदायत फरमाई गई कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौफिका अलैका हक्कन, तेरे जिम्मे तेरी जान का भी हक है, तेरी बीवी का, तेरे मेहमानों का, तेरे पास तेरे सब अड़ोसियों पड़ोसियों का भी तुझ पर अल्लाह ने हक रखा है, उन सबके हुकूक को अदा करते हुए चलो। बस ये तुम्हारी तस्बीहात है, और सुबह शाम ये भी फसब्बे बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलू इश्शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, तुम्हारी तो दो वक्तों में अगर तस्बीह हो जाया करें तो 24 घंटे की तस्बीह शुमार होंगी। एक तो ग़ुरूबे शम्स से पहले यानी असर के बाद एक तस्बीह उस वक्त पढ़ लिया करें, और एक तुलूए शम्स से पहले यानी फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले एक आध तस्बीह पढ़ लिया करें, और कुरान शरीफ की कुछ तिलावत कर लिया करें। एक हम लोगों को कुरान शरीफ की तिलावत का बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए, इसमें उम्मत आज बहुत गफलत में जा रही है। कुरान शरीफ के पढ़ने का रिवाज बहुत कम होता जा रहा है। मदरसों में, पढ़े लिखे लोगों में, आलिमों में, हाफिजों में और दीनदारों में और सूफिया किराम में और मशाइख में तकरीबन तिलावत कुरान करीम का एहतमाम कम होता जा रहा है, जबकि हजरात सहाबा के दौर में और ताबईन और मुज्तहिदीन के दौर में कुरान करीम की तिलावत से बढ़कर कोई जिक्र नहीं समझा जाता था। आपने सुना होगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो इतना बड़ा इमाम है, जिसने ये हनफी फिका मुदव्वन फरमाया, उसके उसूल और उसके फुरू का इस्तिंबात फरमाया और उम्मत के वास्ते कितनी सहूलत का काम करके चले गए, इतनी मशगूली के बावजूद फिर भी रोजाना एक कुरान शरीफ रात को नमाज में खत्म फरमाते थे, और एक दो दिन नहीं, ये मामूल उनका 40 साल तक रहा है। कितनी तिलावत करते थे। आज तो अगर रमजान शरीफ में कोई एक दिन कुरान शरीफ पढ़ ले तो फिर साल भर को उठा के रख देगा कि बस मैंने तो आज ही हक अदा कर दिया है। और अव्वल तो ऐसे लोग भी इस जमाने में कमयाब बल्कि नायाब हैं जो एक दिन में एक कुरान शरीफ 7 दिन में मिलकर भी खत्म करते हों। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में रात को एक कुरान शरीफ खत्म फरमाते थे, और उसके बाद ये नहीं कि वह रात को कुरान शरीफ पढ़ा और जागते रहे और दिन में पढ़ के सो गए, ऐसा नहीं था। दिन में 50 मुज्तहिदीन की एक इल्मी मजलिस थी उनके यहां, इल्मी मजलिस 50 आलिमों की, जो उस जमाने के चीदा चीदा उलमा थे, 50 आलिमों की एक कमेटी थी, मजलिस इल्मिया थी। उनका काम यह था कि किताब व सुन्नत को पेश नजर रखते हुए, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए, उससे उम्मत के लिए मसाइल का इस्तिंबात करते थे कि इस आयत में से ये मसला निकला और इस हदीस में से ये मसला निकला। ये 50 आलिम उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे, और उन 50 आलिमों के वास्ते कोई बाहर से चंदा बंदा नहीं आता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक बहुत बड़ी कपड़े की तिजारत भी करते थे। इतना बड़ा मुज्तहिद इमाम तिजारत भी कर रहा है। आज तो इस जमाने में अगर कोई मौलवी साहब तिजारत के लिए बैठ जाएंगे तो इधर दीन से चले जाएंगे, कौन करेगा तिजारत? तिजारत भी हो रही है, और तिजारत भी इतनी बड़ी है कि अपने घर का खर्चा भी उसी से चलाते हैं, और इन 50 आलिमों की फैमिलियों का खर्चा भी अपनी ही तिजारत से चलाते हैं। कौन है बड़ा सेठ इस जमाने में? जो बहुत बड़ा ताजिर व्यापारी, कोई फैक्ट्री का मालिक और लाखों रुपए उसके पास उसकी इनकम होती हो, और उसने 50 आलिमों को मजलिस इल्मिया के तौर पर दीन की खिदमत के लिए उनके तमाम रोजीनों का, उनके तमाम वजाइफ का, उनके अहलो आयाल की खर्च की जिम्मेदारी उसने ली हो, ऐसा कोई है इस जमाने में? फिर कौन है जो मुंह लेकर बोले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ? तो उनके अमल का ये आलम के रात को रोजाना कुरान शरीफ खत्म करते हैं, उनके इल्म और इज्तिहाद का ये आलम कि 50 आलिमों को अपनी मजलिस शूरा में रखते हैं, और उसके साथ साथ फिर उनकी तिजारत और कारोबारी लाइन का ये आलम कि अपना और 50 आलिमों की फैमिलियों का मुकम्मल इंतजाम चला रहे हैं। हम तो अगर कोई छोटा सा इदारा खोलेंगे, मकतब खोलेंगे, तो सारी दुनिया को मांग डालेंगे उसके लिए, सारी दुनिया में चंदा कर डालेंगे। और वहां क्या हाल था? अपने घर में एक कारोबार चला रखा है, और मंशा और मकसद उस कारोबार का यह है कि हलाल रोजी से अपनी मेहनत की कमाई से इस उलमा की मजलिस की परवरिश होती है। इतना बड़ा काम करते थे, आप बताइए कितना सोते होंगे दिन में? वो हदीस रिवायात में उनकी तारीख में लिखा हुआ है कि दोपहर को खाना खाने के बाद लेट जाते थे थोड़ी देर के लिए। दोपहर को खाना खाकर बस उसका नाम था कैलूला, वो कैलूला फरमाते थे, उसमें आंख लग गई तो लग गई और नहीं लग गई तो नहीं लग गई। दोपहर को थोड़ा सा सोते थे, और ये अमल उनका एक दो साल नहीं रहा, 40 साल तक मुसलसल ये अमल जारी रहा, और इतना बड़ा फिकाए हनफी मुदव्वन करके गए। आज दफ्तर के दफ्तर हैं हमारे पास फिकाए हनफी के, बहुत बड़ी बड़ी किताबें, जखीम किताबें हैं, हिदाया है, हिदाया की 4 जिल्दें हैं, दुर्र मुख्तार, काजी खां, आलमगीरिया, फतावा, और फिर फिकाए अकबर जो खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, वो भी दुनिया में मौजूद है। तो इतना बड़ा काम करके गया, बताइए वो इंसान लोहे का बना था कि चांदी का बना था कि सोने का बना था? कोई मशीन ऐसी है जो 40 साल तक इस अंदाज से चलती रहे और उस मशीन का एक पुर्जा भी कभी खराब ना हो? कोई इंजन ऐसा देखा सुना आपने? गाड़ियां भी आपकी बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ी आप खरीदते हैं, लेकिन साल में दो साल मेरे पैर की जरूरत पड़ जाती है, कुछ न कुछ खराबी आ जाती है, पहिए भी घिसने लगते हैं, उनको भी बदलना पड़ता है, इंजन को भी साफ करना पड़ता है, गाड़ी की बॉडी भी बॉडी होने लगती है। मगर अल्लाह ने कितनी शानदार बॉडी बनाई थी, कितना शानदार दिमाग का इंजन दिया था, और कितनी शानदार उनको सेहत और ताकत और तवानाई दी थी, और कितना उन्होंने इंतिबात औकात फरमाया था। ये थी वो कल की फिक्र जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को थी। ये आज के लिए नहीं कर रहे थे, वो कल के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। इस चांद की फिक्र होनी चाहिए अहले इल्म को, अहले अमल को, और सूफियाए किराम को, मशाइख को, उलमा को, हुफ्फाज़ को, ताजिरों को, कि हम कोई काम ऐसा कर जाएं कि जो अल्लाह ताला के यहां आखिरत में काम आए, कुछ ना कुछ तो कर जाएं, कोई सराय बना दें, कोई मकान बना दें, और कोई मदरसा मकतब कायम कर दें, रिफाए आम का कोई काम कर जाएं, सड़के जारिया से कोई मस्जिद बना जाएं, ऐसा कोई काम कर जाएं हम कल के लिए। ऐसा करना चाहिए, और हर आदमी अपनी अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक कर सकता है। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बन अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो मस्जिद दुनिया में अल्लाह के लिए बना देता है, अल्लाह उसका महल जन्नत में बना देता है। तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी शख्स के अंदर पूरी मस्जिद बनाने की हिम्मत न हो तो? आपने फरमाया कि जितना चिड़िया का घोंसला होता है ना, अगर चिड़िया के घोंसले के बराबर भी किसी मस्जिद की तामीर में किसी शख्स ने हिस्सा लिया है तो उसको भी पूरी मस्जिद का महल ही मिलेगा। अल्लाह के यहां दारो दहेज की कुछ कमी है? कितना बड़ा उसका यहां निजाम है। एक चिड़िया के घोंसले एक ईंट से हो जाएगा, एक पाउंड दे दो, एक रुपया दे दो और चंद पैसे दे दो तो एक चिड़िया के बराबर तो मस्जिद में हिस्सा उसका हो जाएगा, और उसके बदले में भी अल्लाह उसको पूरा ही महल देंगे, यानी कि वहां चिड़िया का घोंसला दे देंगे कि उसमें इतना बड़ा आदमी चिड़िया घोंसले में कैसे रहेगा, ये नहीं, पूरा महल उसके देंगे। और वो महल काहे का बना हुआ होगा? वो तो याकूत का, सोने का, जिब्रजद का, एक चांदी की ईंट, एक सोने की ईंट उसमें लगी होगी। यहां तो हमने कोई पत्थर की मस्जिद बनाई होगी, या ईंट की मस्जिद बनाई होगी, या लकड़ी की बनाई होगी, बहरहाल लोहे वोहे की कुछ बनाई होगी, लेकिन सोने और चांदी की मस्जिद तो आज का कोई बादशाह भी नहीं बना सकता ना। बादशाह भी अगर चाहे, जो हमारा सऊदीया है, जो बहुत बड़ी दौलत का मालिक समझा जाता है, वो भी कोई मस्जिद ऐसी तो नहीं बना रहा जिसमें सोने और चांदी की ईंटें लगा देंगे। कोई गारे की, ईंट की, पत्थर की, सीमेंट की, लोहे की दीवारें बनती हैं, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला इस मस्जिद के बदले में जो हम किसी मस्जिद को दुनिया में तामीर कर देंगे कल के लिए, यानी खालिस इखलास से, मुबारात और मुकाबले और सुमा और शोहरत के लिए, नाम और दिखावे के लिए नहीं, फिर तो सारा अमल बेकार होकर रह जाएगा। मैं अल्लाह की रजा के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको अल्लाह के यहां जन्नत में बना बना एक महल मिलेगा, जो कसरे अबियज के नाम से मशहूर होगा, जिसकी एक ईंट सोने की, एक चांदी की लगी होगी। तो ये हैं वो चीजें जो करने की हैं, और हर आदमी कुछ न कुछ कर जा सकता है। हमारे बच्चे हैं और भी हम कुछ न करें तो इन बच्चों को अपने बाद ऐसा कर जाएं कि जब हम मर जाएं तो कम से कम ये दुआ करते रहें, ये मगफिरत की दुआ करते रहें, कभी कभार तीन दफे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के हमको सवाब पहुंचाते रहें। ऐसा न हो कि हम दुनिया से चले जाएं और ये हमारे खानदान की इज्जत और आबरू को भी खराब कर दें। बच्चों को इस शान से छोड़ के जाना चाहिए कि वो माँ बाप के काम कम से कम दुआए मगफिरत के सिलसिले में आते रहें। ये जब होगा, जब आदमी सोचेगा कि मुझे कल के लिए अपनी औलाद को ठीक करना है, अपनी आखिरत को संवारना है, वहां के लिए कोई सरकाई जारिया छोटा मोटा छोड़ के जाना है, बच्चों को पढ़ा के जाना है, अगर हाफिज अल्लाह ने बनाया है तो उस हाफिज को यह फिक्र होनी चाहिए कि कम से कम एक हाफिज तो मैं बना लूं, और अगर अपना कोई बच्चा नहीं है तो फिर किसी और के बच्चे को उसको हाफिज बना देना चाहिए। और एक हाफिज के बनाने पर इस जमाने में 300, 400, 500 पाउंड खर्च होते हैं एक हाफिज के बनाने पर। तीन साल में हाफिज तैयार हो जाता है, और हमारे यहां के हिसाब से एक हाफिज के बनाने पर गोया 60 पाउंड खर्च होते हैं एक साल में उसके खाने पर, यानी एक महीने में सिर्फ 5 पाउंड खर्च होते हैं, और 5 पाउंड से 60 पाउंड हो जाते हैं 12 महीने के, तो एक साल में 60 पाउंड खर्च हुए तो तीन साल में 180 पाउंड, चलो 200 लगा लो, चलो 300 लगा लो, तो 300 पाउंड में हम एक हाफिज बना सकते हैं, और ये हाफिज हमारे वास्ते काम देगा جیسے یہ بچہ جو حافظ بن گیا اپنے ماں باپ کے لیے باعث سے مغفرت بنے گا، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے باعث سے مغفرت بنے گا، تو ان لوگوں کے واسطے بھی یہ باعث سے مغفرت بنے گا جنہوں نے اس کے پڑھانے میں کسی قسم کا تعاون کیا ہے. تو ہم ایک حافظ بنانے کا ارادہ کر لیں، کوئی دو حافظ بنانے کا ارادہ کر لے، تو یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اپنے ہی بچوں کو ہم حافظ بنا لیں اور اللہ حافظ بنا لے تو پھر عالم بنانے کی کوشش کریں، اور پھر ان کو عالم بنانے کے بعد دین کی لائن پر لگانے کی کوشش کریں، اور ایسا انتظام ان کی زندگی کے واسطے بنا جائیں کہ وہ دین کی خدمت کے واسطے وقف رہیں. ہماری والدہ جب ابھی 2 سال پہلے انتقال کرنے لگی، جس روز ان کا انتقال ہونے لگا تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اور میرا سفر بھی تھا، ایک جلسے میں مجھے جانا تھا. اب میں سچوپن میں تھا کہ یہاں بیٹھوں، ان کی بہت حالت کمزور ہو گئی ہے، تو یہ جلتا جاتا ہے، اور اگر میں جلسے میں جاتا ہوں تو یہ والدہ کے پاس سے چلا جاتا ہوں. تو میں یہ سچوپن میں تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا فکر میں پڑے ہو، تو میں نے اپنی الجھن بتائی. کہنے لگے بھائی تم جلسے میں جاؤ، میں نے تو تمہیں اسی نیت سے پڑھایا تھا کہ تم دنیا کے کام آؤ گے، تم لوگوں کی خدمت کرو گے. اور رہا میرا مسئلہ، اول تو میں ٹھیک ہوں، اور اگر ٹھیک بھی نہیں جا ہی رہی ہوں تو جانا تو مقدر میں ہے، تم یہاں بیٹھے بھی رہو گے تو تم کیا مجھے بچا سکو گے، اس لیے تم جاؤ اور میں ٹھیک ہوں. اور میں چلا گیا، اور میرے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن انہوں نے میرے اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے مجھ سے نہیں کہا، اور بلکہ یوں فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پڑھایا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ تم مخلوق خدا کی خدمت کر سکو، تم اپنے کام پہ جاؤ. تو اگر ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں تو وہ اولاد ان کے کام آتی ہے، اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ آیت کا مطلب ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر آخرت کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لو، اولاد کو ایسی بنا لو جو تمہاری آخرت میں کام آئے، اور دنیا کو ایسی بنا لو کہ تمہاری آخرت بن جائے، تمہارا دین بن جائے، اور پھر علم کو عمل کو دنیا میں پھیلاؤ، اور ایسی زندگی اگر پوری نہ حاصل کر سکو جیسے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی تھی، تو کچھ نہ کچھ تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. نہ صحیح ہم 40 سال تک روزہ نہ قرآن شریف ختم کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک منزل تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اور ایک منزل بھی اگر نہ پڑھ سکیں تو ایک پارہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. ایک پارہ بھی اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ناظر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تو پاؤ پارہ ایک رکوع تو پڑھنے کا ہم کو روزانہ اہتمام کرنا ہی چاہیے، چاہے وہ صبح کی نماز کے بعد کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، جس وقت جس کو سہولت ہو. تلاوت بلا ناغا ہونی چاہیے، یہ عمل آپ یاد رکھیں، کچھ بھی کام ہو مگر تلاوت بلا ناغا ہونی چاہیے، قرآن شریف کی زیارت بلا ناغا ہونی چاہیے. صبح کو قرآن شریف کھولو، اس کا کھولنا، اس کا دیکھنا، اس کو چومنا اور اس کو چھونا، یہ سب عبادت اور اللہ کی بندگی ہے. اور قرآن کریم کی عظمت دل میں اترتی ہے تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم کے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے سے اللہ آخرت یاد آتی ہے. یہ ضرور ہمارا عمل ہونا چاہیے. اس زمانے میں تلاوت کے بارے میں ہم لوگ بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کو دوسرا درجہ ہم نے دے دیا ہے. قرآن کریم کو پہلا درجہ دینا چاہیے. ایک ہی کتاب دنیا میں ایسی ہے جو محفوظ ہے، اور جو کبھی قیامت تک غیر محفوظ ہونے والی نہیں ہے، اور سب سے سچی کتاب ہے، سب سے پکی کتاب ہے، اور بالکل آسمان سے اتری ہوئی اللہ کی بولی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے. دنیا میں اور کوئی چیز اس شان کی اللہ کے لیے اللہ کی نشانی کے طور پر نہیں ہے جو اللہ ہی کی ذات میں سے آنے والی چیز ہو. تو قرآن کریم اللہ کی ذات میں سے نکلنے والا اس کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی دوسری نشانی نہیں ہو سکتی، اور مسلمانوں کے پاس قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دوسری اتنی بڑی نعمت بھی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت مسلمان کے پاس جو آج ہے وہ قرآن کریم ہے. جب تک یہ قرآن کریم ہے اس وقت تک اس قوم کو دنیا کی ساری تاغوتی طاقتیں مل کر بم اور ایٹم بم بنا کر بھی اگر ختم کرنا چاہیں گے اور منفل ارض جمع ہو جائیں گے، اقطار عالم سے ساری دنیا کے شیاطین اور جنات اکٹھے ہو جائیں گے، تو بھی یہ قوم تلاوت کرتے ہوئے کبھی برباد نہیں ہو سکتی. تو اس لیے قرآن کریم کو حفظ جان بنانا چاہیے، اور اس پر اپنے عمل کو ڈھالنا چاہیے، اور کل کی فکر میں ہم کو لگنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت اور عظمت عطا فرما اور اس کی تلاوت کا ہم شوق عطا فرما. اے اللہ ہم کو کل کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہم کو ایمان و ایمانیات سے مالا مال فرما, تقوی عطا فرما. اے اللہ ورع عطا فرما اور اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم کو تسبیحات کا شوق عطا فرما, اپنے ذکر میں ہم کو مشغول فرما, ہماری تمام غلطیوں کو درگزر فرما اور معاف فرما, نمازوں کا ہم کو پابند بنا. اے اللہ مسجدوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما, ماں باپ کی خدمت کا شوق عطا فرما, بڑوں کی توقیر عطا فرما, چھوٹوں پر شفقتیں عطا فرما. اے اللہ دین کی مکمل پابندیاں عطا فرما, ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما, معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہموں کو توباؤں کی توبہ کی توفیق نصیب فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, بیماروں کو شفائیں دے, قرضداروں کو قرضوں سے نجات دے, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ہمارے آبا و اجداد کی, ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے, ہماری اس مسجد کو ہمیشہ محفوظ فرما اور آباد فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, دین کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. جب تک زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو, اور جب وقت آخر تو اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی دیجیے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.